वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराज उवाच स्वयंभूवस्योः गुरुवंशोऽयं विस्तारच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्यान्वदस्नः। अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु, मैंने आपके मुख से स्वयंभू मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतएव मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ, कृपया करके उनका वर्णन करें। मन्वंतरे हरेर जन्म कर्मणि च महीयसः गृणन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान हैं, विभिन्न मन्वंतरों में भगवान के कार्यकल्पों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन अवतारों के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, कृपया उनका वर्णन करें। तात्पर्य श्रीलेसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा, भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मन्वंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी भगवान के अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है, गुणिंत कव्यः, पूर्ण बुद्धिमान एवं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को स्वीकार कर चुके हैं। इस समय विशेष रूप से भारत में अनेक धूत अपने को अवतार बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतएव अवतार की पहचान शास्त्रों के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकल्पों से पुष्टि की जानी चाहिए, जैसे कि इस श्लोक में महीयसाम शब्द से लक्षित है। अवतार के कार्यकल्प कोई जादू या जादूगरी नहीं होते, अपितु विलक्षण कार्यकल्प होने चाहिए। अतः भगवान के अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों द्वारा की जानी चाहिए और उनके यथार्थ विलक्षण कार्यकल्प होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने की उत्सुक हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान हैं, विभिन्न मन्वंतरों के भगवान के कार्यकल्पों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन अवतारों के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, कृपया उनका वर्णन करें। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं अलग अलग श्रेणियों के बारे में, भगवान के अवतारों की विविध श्रेणियां जो हैं, जो श्रीमद् भागवतम में जिनका विवरण है। कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान जाता है, वो इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता। तो ये आध्यात्मिक गुणों को समझने के लिए, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझने के लिए, जो कि बहुत ही गहरा और उत्तम विषय है, श्रीमद् भागवतम जो है इसकी पुष्टि करता है बहुत ही वैज्ञानिक और क्रम अनुसार, जहाँ पर विस्तारित रूप से बताया गया है कि भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, अवतार कैसे लेते हैं, और उनके अवतारों की विविध श्रेणियां कौन सी हैं जिसमें वह अवतार लेते हैं और उनका अवतार क्या है, कहां पर वो अपना जन्म ले रहे हैं और उनके कार्य क्या होंगे। इसलिए जब कोई श्रीमद् भागवतम का विज्ञान समझता है तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति उसे गुमराह नहीं कर सकता। ऐसा साधारण व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरा गुरु भगवान है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं उसकी पुष्टि खास तौर से शास्त्रों द्वारा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसा अवतार केवल शब्दों का हेर फेर नहीं करता या कुछ जादू नहीं दिखाता, लेकिन उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। जैसे कि आजकल के दिनों स्वघोषित अवतार हैं जो अपने आप को अवतार कहते हैं, और भले ही वो बहुत मनमोहित तरीके से प्रवचन करते हो और लोगों को आकर्षित करते हो। जैसे हमारे मंदिर के निकट ये भारतीय विद्या भवन है, वहाँ पर अगले 3 महीनों में एक जादू का खेल होने वाला है। 3 महीने के लिए उन्होंने उस हॉल को भाड़े पर लिया है। हम सोच रहे थे उसी हॉल में हम कुछ आध्यात्मिक महानुभावों को बुलाकर वहाँ पर सनातन धर्म के विषय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर चर्चा करें, इस पर चर्चा करेंगे कैसे मनुष्य जाति प्रेम और शांति प्राप्त कर सकता है आज के इस कलयुग में, जहाँ पर झगड़ा और पाखंड है, इतनी लड़ाई है, इतना असमंजस है, खास तौर से यहाँ पर भारत में आतंकवाद, रोज कितने लोग अपना देह छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं एक दूसरे के द्वेष के कारण। बहुत जरूरत है पूर्ण स्थापित करने की आध्यात्मिक सिद्धांतों की। इसलिए हमने सोचा ये बहुत जरूरी होगा कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाए, लेकिन हम लोगों को नकार दिया क्योंकि वहाँ पर जादू का खेल होने वाला है। और ये सच्ची बात है कि अगर हमें हॉल मिल भी गया होता, 3 महीने के लिए हमने अगर ये प्रोग्राम किया भी होता तो कितने लोग आते। शुरुआत में कुछ 100 लोग आते, दूसरे रात को कुछ और कम, और तीसरे दिन और भी कम लोग आते। तो लोगों की कोई रुचि नहीं है इस चीज में, लेकिन जादू का खेल है। आप सोच सकते हैं, हम लोगों को हॉल वालों ने नकारा, अर्थात जादू का खेल देखने के लिए बहुत लोग आ रहे होंगे। लोगों की बहुत रुचि है जादू का खेल देखने की, और ये बात भी सच है कि ये जो जादूगर हैं आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ये कैसे हो सकता है। वो जो प्रकृति के नियम है जो हम समझते हैं कि हो सकता है, उसके विरुद्ध कुछ करके दिखाते हैं। जो प्रकृति के स्वाभाविक नियम है उसके विपरीत कुछ करते हैं, और हमारे अनुभव में जो कुछ है उसके विपरीत वो करके दिखाते हैं। और इतना ही आश्चर्यजनक और सम्मोहित करने वाला ये कार्य होता है इनका, कि लोग कुछ भी कर देखने के लिए कुछ भी देने को राजी हैं, अपने जीवन का समय देने के लिए राजी हैं, कुछ भी करने के लिए राजी हैं, केवल ये जादू देखने के लिए। जैसे कि अमेरिका का एक बहुत ही प्रचलित जादूगर था, बहुत ही निष्णात था, उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया न्यूयॉर्क हार्बर पे और वहां पर उसने घोषित किया कि वहां पे जो लिबर्टी का स्टैचू है उनकी मूर्ति है उसको वो गायब कर देंगे। आपको पता है कितना बड़ा है वो स्टैचू? बहुत ही बड़ा, बड़ी मूर्ति है लिबर्टी की, वो करीब 12 मजले जितनी लंबी होगी और न्यूयॉर्क हार्बर पे वो स्थित है और कई सैकड़ों वर्षों से लोग वहां पर आ रहे हैं उसको देखने के लिए। मैनहट्टन में है वो, न्यूयॉर्क मैनहट्टन। हजारों हजारों लोग वहां पे एकत्रित हुए उस तट पर, न्यूयॉर्क के हार्बर पर। रात का समय था और लिबर्टी के मूर्ति को प्रज्वलित किया गया। ये व्यक्ति, ये जादूगर बहुत ही प्रचलित है और ऐसे कार्य करता है कि लोग हमेशा अचंभित रह जाते हैं। उसने कहा इस मूर्ति को मैं गायब करूंगा। और ये सारा कार्यक्रम टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, वहां पर कैमरा लगाए गए थे और सभी की आंखों के सामने। ऐसा नहीं कि ये चीज कोई 500 वर्ष पहले हुई, लोग कहेंगे वो इतनी पुरानी बात है, कैसे हो सकता है, हमने देखा नहीं। ये करीब 2 वर्ष पहले की बात है, हजारों हजारों लोगों की आंखों के सामने, जहां पर टेलीविजन के कैमरा लगाए थे, उन्होंने सच्ची में लिबर्टी की मूर्ति को गायब कर दिया। और लोगों को इतना आश्चर्य हुआ। पहले एक बहुत बड़ा पर्दा डाला गया उस मूर्ति पर, फिर जब पर्दा उठाया तो वो मूर्ति गायब हो गई थी लिबर्टी की। सब लोगों का मुंह खुला रह गया, हाँ कैसे किया उन्होंने। लोग बड़े चिंतित हो गए क्योंकि ये मूर्ति जो थी लिबर्टी की, ये अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती थी। पहले कई बार लोग आए इस मूर्ति को तोड़ने के लिए अलग अलग देशों से, सफल नहीं हुए और आज ये मूर्ति गायब हो गई। फिर थोड़े समय बाद लोगों के मन के साथ खेलने के बाद ये फिर मूर्ति वापस आ गई सबकी आंखों के सामने। लोग सोचने लगे ये तो बहुत महान व्यक्ति है। लेकिन जब उनसे बात किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उसने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केवल ये जानने की बात है कि कैसे करना चाहिए इसको, ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, ये केवल एक कला है कि कैसे किया जाए इसको, बस इतना जानना चाहिए। और नित्य रूप से वो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं, बड़े ही रोमांचक कार्यक्रम इस प्रकार। असल में पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले जादूगर हैं ये। लास वेगास में जब उनका प्रोग्राम होता है, बहुत पैसे दिए जाते हैं। कहीं पर भी वो अपना कार्यक्रम करें, एक भी सीट खाली नहीं रहती, लोग भर जाते हैं उनको देखने के लिए। और उस स्टेज पे कई घंटों खड़े रहके विविध प्रकार के जो है रोमांचक कार्य करते रहते हैं। उन्होंने ये सब कला में निष्णात हो गए हैं वो। तो लोग बड़े आतुर होते हैं इस प्रकार की चीजें देखने के लिए, लेकिन परम सत्य के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए वे इतने आतुर नहीं हैं। वो आतुर नहीं है कि किस प्रकार से भगवान के लिए पाप कर्म त्याग दें। वो आतुर नहीं है संतों को देखने के लिए जो अपना जीवन भगवान के लिए दे रहे हैं, लेकिन जादू में उनका बड़ा रुचि है। तो जिस प्रकार जो ये सब जादूगर हैं जो स्थूल चीजों को बदलते हैं, हमारे आंखों के सामने लाते हैं और गायब करते हैं, लेकिन ऐसे योगी जादूगर भी हैं जो सूक्ष्म वस्तुओं को गायब कर सकते हैं या उसके साथ खेल सकते हैं। उनकी जो कला है वो सूक्ष्म स्तर पर है, वो केवल दिखावा नहीं, असल में वो कुछ बदलाव कर सकते हैं या ला सकते हैं चीज को। लेकिन फिर भी एक भक्त जो है वो ये जानता है कि पूरा का पूरा जग जो है वो एक मोह में डालने वाला है कि कुछ हुआ या होने वाला है या जादू नहीं हुआ या जैसे आप कहते हैं होगा। किसी भी तरीके से वो पूरा एक भ्रम ही है, भ्रमित करने वाला है, एक जादू ही है, जादू का खेल है। एक जादूगर जो हॉल में कुछ कर रहा है या कोई योगी जादूगर जो आपने आश्रम में कुछ कर रहा है, दोनों ही सब जादूगर ही हैं। लेकिन यहाँ पे बताया है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो बड़े रोमांचक कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो जादूगर नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण भगवान, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया और 7 दिनों तक उठाए रखा। आज के दिन वो उसकी परिक्रमा उस गोवर्धन की 14 माइल है। कैसे संभव है? देखिए कितना अद्भुत है। उन्होंने विजय किया बहुत ही शक्तिशाली असुरों को, पूतना और अघासुर, तृणावर्ता। कैसे श्री कृष्ण भगवान ने पूर्ण जगत को अपने मुख में दिखाया, अपनी माँ को, कैसे रास के नृत्य में उन्होंने अपना विस्तार किया सभी गोपियों के साथ, अपनी बांसुरी इतनी सुंदरता से बजाई पूर्ण जग को मोहित करने के लिए, कैसे द्वारका में अपना राज्य बनाकर 16,108 रानियों के साथ सबके लिए एक एक महल बना के हर एक के महल में अलग अलग कार्य करते हुए वो कैसे रहे। ये सब कार्य हैं जो कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये बड़े अद्भुत कार्य हैं। किस प्रकार मत्स्य अवतार बढ़ गए, कई करोड़ों माइल लंबे हो गए और पृथ्वी को बचाया, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को बचाया, राजा सत्यव्रत को बचाया। कैसे भगवान ने वराहदेव का बड़ा सा रूप धारित किया, पृथ्वी को उठाने के हेतु अपने दांतों पर। कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परशुराम के रूप में आए और 21 बार क्षत्रियों को हराया। नरहरि के रूप में आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप लेकर आए, एक भयंकर रूप में आए और असुर का नाश किया। कैसे रामचंद्र के भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए, एक सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हुए, और कितने सुंदर सुंदर कार्य किए उन्होंने जो हमारे समझ से परे है। कैसे उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, कैसे उन्होंने पूरी सृष्टि का मन मोह लिया, अयोध्या वासियों को आकर्षित किया। इस प्रकार जब भगवान अवतरित होते हैं, जैसे रामचंद्र भगवान, उनको सुग्रीव ने चुनौती दी कि मेरा भाई बलि, उसकी क्षमता थी कि ये साल के पेड़ थे, उसके आर पार तीर मार सकता था, वो करीबन 6 साल के पेड़ थे और हर एक के आर पार वो अपने बाण चला सकता था। तो श्री राम भगवान ने अपने तीर लिए और एक तीर चलाया जो कि एक के बाद एक सारे 6 पेड़ों के आर पार हो गया, फिर नीचे चले गया पाताल लोक में, और फिर पाताल लोक से घूम कर वापिस आया वो तीर और फिर से श्री राम भगवान के पास आ गया। तो ऐसा कोई जादूगर, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जब भगवान आते हैं बहुत ही महान कार्य करते हैं जो कोई साधारण व्यक्ति स्टेज पे करता है जादू वैसा नहीं। ये भी बताया गया है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो जो क्यों अवतरित होते हैं, क्योंकि जो निर्दोष और सच्चे दिल वाले भक्त हैं वो उन्हें नकली साधु गुमराह न करें, तो ये अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्यों अवतरित होते हैं। सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो ये वर्णन दिया गया है, परीक्षित महाराज उसकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान है, विभिन्न मन्वंतारों के भगवान के कार्यकल्पों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन अवतारों के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, कृपया उनका वर्णन करें। तो इसलिए हमें आतुर होना चाहिए इन अवतारों के बारे में सुनने के लिए, सही स्त्रोत्र से उनके सुंदर अवतार जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर हुए। और भारत में बस पिछली पीढ़ी की बात है, लोग इतने पुण्यवान थे कि हर गांव में, हर शहर में वहां के रहने वाले लोग काम काज करके जब शाम को घर लौटते, साथ में बैठ के महाभारत पढ़ते, रामायण के ऊपर चर्चा करते, श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते, और बड़े आतुर होते साधुओं को अपने घर आमंत्रित करने के लिए, जो सही संप्रदाय से आते हैं ऐसे साधुओं को, और उनसे वह सुनते भगवान की कथा। इसको कहते हैं बुद्धि। हम वर्णाश्रम के अनुसार किसी भी श्रेणी में हो, असली बुद्धि वो है कि कैसे पहचानी जाती है, ये हमारी आतुरता क्या है सुनने की भगवान के महान कार्यों को। ये असली बुद्धि क्यों है? क्योंकि इस मार्ग से हमें सारे भ्रम से छुटकारा मिल जाएगा, इस भौतिक जगत की वेदना से हमें छुटकारा मिल जाएगा और पूर्ण स्थापित हो जाएंगे। भगवान के प्रति हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है वो पूर्ण स्थापित हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और इस प्रकार के मनुष्य जीवन के लक्ष्य को साधना ये बुद्धिमान है, और इसके प्रति अंधकार में रहना ये अज्ञान है। तो हमें कोई चिंता नहीं है कि भौतिकवादी लोग क्या सोचते हैं कि सफलता क्या है, मूल्य क्या क्या है। हमारा जानना यही है कि संत क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। महान संत और शास्त्र कहते हैं कि एक ही मार्ग है स्वयं के स्वरूप को समझने का, वो है भगवान के गुणों का गुणगान करना। इसलिए ये हमारे बुद्धि का स्तर है। हम दूसरों के स्तर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के तथाकथित लोगों को आपको बेवकूफ बनाने मत दो। आपके परिवार वाले कहेंगे ये भक्ति क्या है, पागलपन कर रहे हो, आप व्यवहारिक नहीं हो, आप कैसे इस दुनिया में रहोगे, हमारे लिए कैसे आप पैसा कमाओगे अगर आप भक्ति करोगे तो। ये सब भ्रम है। वो अपने जीवन का लक्ष्य इस भौतिक जगत के शाश्वत अनित्य चीजों में डाले हुए हैं, इसलिए भक्त जो है इसमें अपना मन नहीं लगाता। आजकल के पॉलिटिशियन, आजकल का समाज ऐसा वातावरण बना रहे हैं केवल हमारे मन को कब्जा करने, हम पर दबाव डालने के लिए, ये सोचने पे हमको मजबूर करें कि हमारे पास ये नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवित होंगे, हम वो प्राप्त नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब बनावटी है। शास्त्र और साधु केवल एक ही बात कहते हैं, आपको केवल एक ही चीज चाहिए, भगवान। अगर आपके पास कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को अपना मध्य बनाइए जीवन का। संतों की बात को समझिए, और उसका लक्ष्य बनाइए। सामान्य मनुष्य की बात न सुने, और सामान्य मनुष्य अगर कुछ बोलता भी है तो उसकी रुचि केवल मनोरंजन में होती है, जादू के मनोरंजन में। इसलिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे लोगों की जो मेंढक की तरह आवाज कर रहे हैं। हम भगवान के सुंदर गीत को सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये वर्णन को आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें बताने वाला है कि मनवंतरों के बारे में बताने वाला है। यहाँ पे बताया गया है कि मनु जो हैं, 14 मनु हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। जैसे कि हम अपना दिन का विभाजन करते हैं घंटों में, मिनटों में, क्षणों में, तो शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन जो है वो हमारी तरह घंटों, मिनटों और क्षणों में या वर्षों में विभाजित नहीं है, लेकिन इस प्रकार विभाजित है कि 4 युग हैं। सत्य युग है, फिर त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलि युग है। और इन चारों युगों, जब ये सारे चारों युग एक साथ में इनको लेकर एक युग चक्र होता है, अर्थात चारों युग, चारों युगों को मिला के एक युग चक्र होता है। तो 71 युग चक्र जो है वो एक मनु की आयु है, और प्रत्येक मनु जो है वो नियंत्रक है 71 युग चक्रों का, और ऐसे 14 मनु हैं, और ऐसे 14 मनु की आयु जो है वो ब्रह्मा जी की आयु होती है। बहुत लंबा लंबा समय है, करीबन 311 महाशंख वर्ष होते हैं वो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना लंबा है, जो कि एक जीवात्मा है मेरे और आपकी तरह, लेकिन बहुत लंबे लंबा जीवन जीते हैं, किंतु हम इतने तुच्छ हैं, हम इतने छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं हम बहुत महान हैं, हम समझते हैं हमारा जीवन कितना महत्व का है, हम इतने स्वार्थी हैं। दुख और सुख का आना जाना हमारे जीवन में कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्षों के लिए, और हम समझते हैं कितनी महत्व की बात है, हमारा मन इन चीजों में खोया रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी से अगर हम तुलना करें उनके जीवन से, हमारा पूर्ण जीवन एक क्षण का भी नहीं है, और कृष्णा से तुलना में ब्रह्मा का जीवन एक क्षण भी नहीं है, हम सब इतने तुच्छ हैं। इसलिए ये सब जानने के बाद, महान चीज शास्त्रों के सुनने के बाद, इस तात्पर्य पे हमें आना चाहिए कि हम कितने तुच्छ हैं। ब्रह्मा जी का जीवन इतना लंबा है, ये सब हमें क्यों दिखाना चाहते हैं कि हमें अपना मन जो है खुद के शुद्र चीजों पर नहीं स्थित करना चाहिए, कृष्ण पे स्थित करना चाहिए, इस जगत की चीजों पे नहीं। ये जगत जो है इसमें शुद्र बदलाव होता रहता है, ये बुद्धि मानता है। इसलिए अगर हम एक साथ एकत्र होकर आते हैं भगवान की स्तुति सुनने के लिए, उनकी स्तुति करते हैं, गान गाते हैं, मन एक भगवान हरि के बारे में सुनते हैं जो कि आनंद पूर्वक है, तो हम अपनी छोटी अस्तित्व को भूल कर, जो कि अनित्य है, जो कि बहुत ही तुच्छ है, हम भगवान में खो जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से इस प्रकार की स्तुति सुनने से हम अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जो असली साधु हैं, वो हमें कुछ जादू नहीं दिखाते जैसे कि कोई जादूगर दिखाता है। जैसे कि एक जर्मन आदमी भारत में आया भगवान को ढूंढने, ये जानना चाहता था कि कौन सी चीज है जो इंडिया से लोग भारत से आकर्षित हैं। योगियों के बारे में देखा कि योगी पानी पे चल सकता है, फिर कहने लगा कि साधारण व्यक्ति ने भी बोट बनाई है जो पानी में चल सकती है। मैंने देखा योगी हवा में उड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग आकर्षित भी हो जाए, पर मुझे आकर्षण नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे जर्मनी में भी लुफ्थांसा एयरलाइंस है, प्लेन है जिसमें आप उड़ सकते हैं। उसने कहा हर जादुई शक्ति जो योगी कर सकते हैं, जैसे कुछ योगी सोना बना सकते हैं, कह रहे हम भी सोना बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन हम भी बना सकते हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो योगियों ने की है और साधारण मनुष्य ने नहीं की। जैसे कुछ योगी बीमारी को ठीक कर देते हैं, उस प्रकार हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी दवाइयां भी ठीक कर सकती हैं। मैंने एक ही योगी देखा है जो ऐसा कार्य कर रहा है जो कोई भौतिक समाज नहीं कर सकता, और वो योगी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि वो अपनी शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करके वो हमारा हृदय प्रज्वलित कर रहे हैं भगवान के प्रेम से। वो हमें एक नित्य सत्य से जोड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में। इसलिए उस आदमी ने कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्योंकि आप एक हैं जो ऐसी चीज दे रहे हैं जो पाश्चात्य देश में नहीं है। इस प्रकार भगवान की स्तुति सुनकर, आतुर होने पर उनकी स्तुति सुनकर, सुखदेव गोस्वामी कोई जादूगर नहीं थे, एक नम्र भक्त थे। वो इतने महान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध हृदय से भगवान की स्तुति की। तो सुखदेव गोस्वामी और उनके प्रतिनिधि उनके साथ संग करके अपनी प्रगति करना, ये असली बुद्धि मानता है। इसके बाद ही हमारा दृष्टिकोण साफ हो जाएगा, हम समझ पाएंगे कि कैसे जो नित्य सत्य है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, उसमें कैसे स्थित करें, और सारी दुखों की जो भंडार है, जो हमारी आसक्ति है, उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें। क्या कोई प्रश्न है? आइए देखते हैं कौन सा जादूगर है जो ऐसा उनके जैसा कर सकता है। किसी जादूगर से कहिए अपना विराट रूप दिखाए जैसा कृष्ण ने दिखाया था। देखिए 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और कोई भी जादू करने की एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान आते हैं तो वो बहुत आगे कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक जगत के कार्य यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। भगवान छोटे बालक भी थे, तभी भी ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता था, केवल ये स्थापित करने के लिए वो भगवान है करके। लेकिन उतना ही नहीं, क्योंकि उनके कार्य केवल आश्चर्यजनक नहीं है, किसी भी जादू से ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो स्वयं स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि वो शास्त्रों में कि कब वो अवतारित होंगे। तो ये दो चीजें हैं
by which we can understand who is a real avatar.
दो तरीके हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि कौन असली अवतार है। एक तो कि शास्त्र में सीधे सीधे उनका वर्णन किया गया है, उनका नाम, उनका रूप, उनके कार्य, और दूसरी बात कि वो बहुत ही महान कार्य करते हैं अवतारित होने के बाद, जैसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तो अगर इन दो मार्गों द्वारा अगर किसी को अवतार बताया जाता है तो हम मानने को राजी हैं कि वो व्यक्ति अवतार है। जैसे कि इस हॉल में 3 महीने के लिए कोई मैजिशियन जादूगर आके बहुत चमत्कार कर सकता है और बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। ऐसे योगी जादूगर अगर कोई आ जाए तो बहुत लोग आ जाए उनकी शरण लेने के लिए। लोग चाहते हैं कि उनका कोई मनोरंजन करे, वो लोग शरणागत नहीं होना चाहते। असली साधु जो हैं वो लोग सिखा रहे हैं कैसे शरणागत होना चाहिए हमें। इसलिए आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे इस प्रकार के कार्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।